भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, अध्याय शीर्षक सुखदेव गोस्वामी का आगमन, श्लोक क्रमांक 4। स चिंतयन् इत्थम् अथ अश्रुणोत् यथा मुनेहे सुतोक्तो निरितिः तक्षकाख्यः। स साधु मेने नचिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। सचिन्तयन्निथमथाश्रुणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरिति तक्षकाख्यः। स साधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। स चिन्तयन्निथमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्यः। स साधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। स चिन्तयन्निथमत्था शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्यः। स साधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। सचिन्तयन्निथमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरितिस्तक्षकाख्यः। स साधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। कोई माताजी। स उसने राजा ने चिंतयन सोचता हुआ इत्थम इस प्रकार अथ अब अश्रुणोत सुना यथा जिस तरह मुने मुनि के सुत उक्तः पुत्र द्वारा कहा गया निरिति मृत्यु तक्षकाख्य तक्षक सर्प के विषय में सह उसने राजा ने साधु अच्छा तथा शुभ मैंने स्वीकार किया न नहीं चिरेण दीर्घ काल तक तक्षक सर्प अनलम अग्नि प्रसक्तस्य लिप्त रहने वालों के विरक्ति उदासी कारणम कारण अनुवाद। जब राजा ने इस तरह पश्चाताप जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार तक्षक सर्प के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनिपुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार तक्षक सर्प के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। ये प्रसंग ऐसा है, महाराज परीक्षित जंगल में गए थे और वहां भ्रमण करते हुए प्यास लगा उनको, भूखे भी थे थके भी थे, तो प्यास बुझाने के लिए एक ऋषि का आश्रम दिखा, वहां प्रवेश किए। पूरे विश्व के सम्राट और जब उन्होंने देखा कि वो ऋषि ध्यान का बहाना लगाए चुपचाप बैठा है और उन्हें ठीक से स्वागत नहीं किया जो उसका कर्तव्य था, तो वो भूखे और प्यासे तो थे ही, थोड़े क्रोधित भी हो गए और उनको सिखाना चाहा एक सीख। तो देखा आसपास में, कभी कभी आदमी क्रोध आता है तो आसपास में देखता है क्या है जिसके द्वारा मैं प्रहार करूं। देखा आसपास में क्या करूं, किस प्रकार से इसको सिखाऊं कुछ सीख, और देखा कि वहां मरा सांप था और उस लिए और उस व्यक्ति के सर पर डाल दिए, गले में डाल दिए हार के रूप। फिर शांत हुए, चल पड़े। एक रूप से देखा जाए तो परीक्षित महाराज की कोई बड़ी गलती नहीं थी। आज एक छोटा छोटा नेता इस संसार का, उसके प्रति कोई अगर अपमान करता है, उसको लगता है कि मेरे प्रति अपमान किया इस व्यक्ति ने, एक नगण्य तुच्छ मामूली व्यक्ति ने मेरे प्रति अपमान किया, तो फिर गले पे मरा सांप तो डाल गला ही काट देता है उसका, और कोई उसको पूछता भी नहीं उस व्यक्ति को, क्योंकि बहुत शक्तिशाली आदमी है और किसी न किसी तरह से उस विषय को उतना महत्व नहीं देता और हो गया बस। पर यहां पूरे विश्व के सम्राट है ये, और उनके यहां गए और गुस्से में मारा नहीं उसे, अपमानित किया बस, तूने बड़ा ठंडा रिसेप्शन दिया मुझे, कोल्ड रिसेप्शन अंग्रेजी में कहते हैं, कोल्ड रिसेप्शन मतलब कोई आया तो खुश हुआ ऐसा नहीं, आए ठीक है, सो कहते कोल्ड रिसेप्शन, बड़ा एकदम देयर इज नो वार्मथ ऑफ अफेक्शन, प्रेम की वो जो गर्मी नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकते, वार्मथ ऑफ अफेक्शन, बड़े प्रेम से दिखाने के बदले एकदम ठंडा भाव, कुछ नहीं मतलब, तो कहा कि ठीक है, यू गेव मी ए वेरी कोल्ड रिसेप्शन, आई विल रेसिप्रोकेट वेरी कोल्ड वे, मरा हुआ सांप ही बहुत ठंडा होता है हमेशा, मरा हुआ सांप तो और भी ठंडा होता है, बोला तुमको भी ठंडा कर दिया, गले में डाल दिया बस, कुछ नहीं निकल पड़े, तुरंत उस तत्पश्चात, ये एक महान व्यक्ति का लक्षण है, महान व्यक्ति और एक मामूली व्यक्ति में अंतर क्या है, गलती हर एक व्यक्ति करता है, पर गलती का करने के बाद एक व्यक्ति की हृदय में प्रतिक्रिया क्या होती है वो दिखाता है कि वो व्यक्ति सचमुच में महान है, आत्मा है, या मामूली आत्मा है, या दुरात्मा है। एक दुरात्मा, एक तो गलती किया है और उसके ऊपर एक पूरा एक बड़ा सिद्धांत बताएगा कि कैसा मैंने ठीक किया, और मामूली व्यक्ति ठीक है, उसने किया मैंने भी किया, हो गया ना, भूल गया बस। महात्मा का लक्षण ऐसा है कि नहीं, मेरे इस स्थिति में इतना ज्ञान प्राप्त करके क्या मैंने ये कार्य ठीक किया, बहुत बड़ी गलती की। परंपरा क्या है, मैं पांडवों का पुत्र हूं, मैं एक बड़ा सम्राट हूं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तदेवे तो रोजन सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, भगवान गीता में कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है तत् तदेव लोग उसमें सीखते हैं, अगर राजा इतना कर सकता है तो मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं, वो 1,00,000 खाता है तो मेरे को 1,000 खाने में क्या तकलीफ है, तो इसीलिए बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी। तो महाराज परीक्षित को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, शुरुआत ये अध्याय का शुरुआत ही हो रहा है, ये अध्याय की शुरुआत होती है जब परीक्षित महाराज शमिक मुनि, शमिक ऋषि के आश्रम से बाहर निकले, उस समय क्या विचार है, सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उसने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है, शिष्टाचार के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए और जघन्य बहुत बड़ा पाप है ये, फलस्वरूप वह अत्यंत उदास था, ही वॉज डिस्ट्रेस्ड। तो ये एक महापुरुष का लक्षण है कि इसमें से छोटी भी गलती हो जाए तो बहुत दुख होता उसको, क्यों मैंने किया ऐसा। तो अच्छा, तो दुख तो हो गया, वो कौन सा बड़ी बात है, वो कोई भी दुखी अपने आप को दिखा सकता है, पर एक्चुअली पश्चाताप करना, और उनकी भावना क्या है, कहते हैं ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनात् दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात तदस्तु कामम ही अग्रि निष्कृताय में यथान कुर्याम पुनरेव मद्धा। राजा परीक्षित मन ही मन सोच रहे हैं, अच्छा कोई कह सकता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने ऐसा ऐसा किया बहुत बुरा लगा, बुरा लगा, पर उसका किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाते हैं, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशंका है
कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। समझ गए कि मैंने गलती किया है और ये कर्म का फल ऐसा है। कोई भी हम कर्म करते हैं सतयुग में तो विचार भी किया गलत तो उसका परिणाम मिलता था, बोला तो मिलता था, किया तो 100% मिलने वाला है। पर कलयुग में विचार किया या बोल भी दिया तो उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि यहां क्या क्या विचार करता है। माझी मन इतना दूषित है कलयुग में कि विचार हजारों आते लाखों आते और उस विचारों को ध्यान करते करते कुछ बोल भी देते आदमी, पर जब तक करता नहीं उसको गंभीरता से नहीं लेते भगवान। बड़ा छूट है हमारे लिए, सतयुग में ऐसा नहीं था, कोई सोच भी लिया गलत पाप लग गया तो बड़े भाग्यशाली है। पर कलयुग का खासियत यह भी है कि कुछ अच्छा चीज सोच भी लिया तो उसका परिणाम मिलता है आपको। कल मैं पूरा निर्जल एकादशी करूंगा और सुबह उठने के बाद सोचा अरे बाप रे बहुत भूख लग रहा है, कल रात को ठीक से खाया ही नहीं था, फिर भी अरे नहीं सोचा है कल तो निर्णय लिया था मैंने, फिर बाद में देखे कि नहीं 12 बजे तक दोपहर को किया बहुत हो गया, आधा दिन तो किया ना ठीक है अब खा लेंगे, चलो खा लिए, पर आपको पूरे पूरे दिन का करने का फल मिलेगा क्योंकि कम से कम विचार किया था कि पूरे दिन मैं करूंगा। ऑफकोर्स हर बार सोचना और हर बार करना ऐसा वो भी है, नामनो बलादे से ही पाप बुद्धि, ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ सोचते रहूंगा, करना तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, ये भावना गलत है। पर अगर तीव्र इच्छा हो पर किसी कारण नहीं कर पाए चलेगा, तो फायदा सोचने से भी मिलता है, बोलने से भी मिलता है, करने से तो मिलेगा ही, पर पाप जो है वो नहीं मिलता। तो तुरंत वो सोच रहे हैं कि नहीं मैंने क्योंकि गलती किया है निश्चित रूप से मुझे फल मिलना चाहिए, अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। वो जो भी है सजा जल्द से जल्द आने दो ताकि मैंने जो पाप कर्म किया है उसका फल मुझे मिल जाए इसी जीवन में, ताकि अगले जीवन में फिर से उसको बढ़ता नहीं जाए, और दूसरा मैं सीखूं कि फिर से गलती नहीं करूं ऐसा। अच्छा है, लेट इट कम, जो भी है। और कहां तक वो सजा भुगतने के लिए तैयार थे, मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूं। कितना जिम्मेदारी मानते हैं अपने आप को, क्योंकि राजा प्रत्यक्ष देवता नरदेव, राजा को भगवान का प्रतिनिधि बताया गया है, तो गो ब्राह्मण ने हिताय च, भगवान गो ब्राह्मण ने हित है, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना गो और ब्राह्मण की संरक्षण। मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप, मैंने उपेक्षा किया है, मैं प्रतिनिधि हूं, मामूली व्यक्ति नहीं, एक प्रतिनिधि हूं भगवान का, और मैंने ऐसा कार्य किया है, इसीलिए अशिष्ट मतलब मेरा शिष्टाचार ठीक नहीं रहा है, व्यवहार ठीक नहीं रहा, और पापी भी हूं, मैंने पाप कर्म किया है, ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, एक ब्राह्मण को की अवहेलना की मैंने, अतएव मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा उपाक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की कोषाग्नि से, क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से मार्गदर्शित न हो। देखिए इस हद तक सब कुछ खोने के लिए तैयार है। कहते हैं मेरे सारे पराक्रम, मेरा राज्य, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में तुरंत भस्म हो जाए। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं इसके तात्पर्य में कि महाराज परीक्षित ये नहीं चाह रहे थे कि मेरा राज्य भस्म होकर राख हो जाए, भले कह रहे हैं पर उनकी इच्छा ये नहीं थी, क्योंकि अगर राज्य भस्म हो जाए, अगर हो जाएगा, उसमें जितने सारे ब्राह्मण हैं और समीकरण ऋषि भी उन्हीं के राज्य में है, श्रृंगी भी है, सब लोग जल के राख हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों कह रहे परीक्षित महाराज? उनका कहने का मतलब क्या है जीव गोस्वामी समझाते हैं, उनका कहने का मतलब यह है मेरे परिवार को तकलीफ ना हो, मेरे राज्य को तकलीफ ना हो, मुझे कुछ ऐसा सजा दो प्रभु जिसके द्वारा मेरा जो इन चीजों के प्रति आसक्ति है या मेरा जो भोग करने की प्रवृत्ति, मेरा जो संबंध है इन चीजों के साथ वो कट जाए और किसी और को तकलीफ ना हो, सिर्फ मेरे को ये सजा मिले क्योंकि मैंने डाला। अगर राज्य जल के भस्म हो गया तो सबको तकलीफ होगा। ये उनकी पश्चाताप भावना है और एक्चुअली ऐसा पश्चाताप की अग्नि में ही व्यक्ति उसके सारे पाप कर्म शुद्ध हो जाते, जल के राख हो जाते। वो भोगने से पहले ही अगर पश्चाताप की जो अग्नि है उसी में एक्चुअली हमारे सारे पाप जल के राख हो जाते हैं, अगर प्रामाणिक है वो। और प्रामाणिक का मतलब क्या? फिर से मैं नहीं करूंगा ऐसे कार्य। फिर से किया तो उसका मतलब क्या है कि पश्चाताप हुआ नहीं, सॉरी 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 बोलना, फिर से वही काम करना, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर अरे मतलब तुरे को सॉरी लग ही नहीं रहा है। बच्चा आके बोले पिताजी को कुछ गलत कह गया, बेटा ऐसा नहीं करना, हाँ सॉरी सॉरी पापा, कल जाके वही काम करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तीसरी बार कहेगा सॉरी, थप्पड़ लगा, बोला तेरे को कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पश्चाताप हो नहीं रहा, तो फिर से नहीं। तो ये भावना ऐसी है कि उन्हें कोई उनको तकलीफ हो बर, और किसी को, परिवार के लोगों को या समाज के लोगों को या पूरे राज्य के लोगों को, किसी लोगों को तकलीफ ना हो, ये भावना है परीक्षित महाराज की। और हम देखते हैं कि वैसे ही हुआ। तो इन श्लोकों को सुनने से कभी लगता है, ये सुनना बड़ा आसान है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे काउंसलर्स लोगों के, हमने एक मीटिंग किया था और वहां यही चर्चा कर रहे थे कि भागवत में एक्सट्रीम एग्जांपल्स आर गिवन, ऐसे उदाहरण गए हैं जो मतलब सीमा तक ले जाती है। क्यों ऐसा उदाहरण दिया जाता है? ताकि व्यक्ति बड़ा नम्र हो जाए। कोई थोड़ा दान दिया, हमको लगता कि मैंने बहुत बड़ा दानी हूं, अरे बलि महाराज जैसे दान दिया तुमने, नहीं नहीं उसके सामने हम तो कुछ भी नहीं, मैंने उपवास किया, अच्छा रंती देव जैसा किया उपवास तुमने, बड़ा वैरागी है, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे है वो, उनको देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम कितने तुच्छ हैं, कितने नगण्य हैं, नम्रता आ जाती है। और दूसरी चीज कि हमारी जो इच्छा है होनी चाहिए, ऐसा वैराग्य होनी चाहिए, ऐसा नम्रता होनी चाहिए, ऐसे गुण उपलब्ध होनी चाहिए। तो भागवत में पूरे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड नहीं, पूरी सृष्टि में अनंत काल से ऐसे मतलब विशिष्ट उदाहरण, एक एक लक्षण की पराकाष्ठा, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं ताकि सुनकर हम बड़े नम्र हो जाएंगे, हम अपने आप को बड़े भक्त नहीं मानेंगे। और दूसरी चीज है हमारी इच्छा भी ऐसी, एटलीस्ट कम से कम आसमान को छूने की इच्छा से छलांग मारेंगे तो शायद छत को छू पाएंगे। ऐसे महान व्यक्तियों का पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ा तो एक विचार आएगा कि कम से कम छोटी मोटी चीजों से तो मैं विरक्त रहूं कम से कम। अरे इतने बड़े पूरे विश्व का साम्राज्य, क्या सम्मान, क्या संपत्ति, क्या ऐश्वर्य, एक क्षण के अंदर सब कुछ खत्म, और एकदम विचलित ना होना, बड़े कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना, एग्जैक्टली इससे भी ज्यादा होना चाहिए था, प्रभु आप बड़े कृपाशाली हो, सिर्फ सैंपल दिए हो, मैं इतना पापी हूं कि मुझे और चाहिए, ऐसी भावना कैसे हो सकता है ये राजा में, ऐसी नम्रता ऐसा वैराग्य, ऐसी प्रामाणिकता कैसे देख सकते हैं ऐसे महान राजा में जो पूरे विश्व के सम्राट है। एक्चुअली हम लोग सोच भी नहीं सकते विश्व का सम्राट का मतलब क्या होता है। द पावर, द ऑपुलेंस, द वेल्थ, द रिस्पेक्ट, द ऑनर, द वर्शिप, और एक क्षण में निकाल दिया जाए। प्रभु रामचंद्र का उदाहरण भी ऐसी है, कई कई बोल रही थी अरे अरे ऐसा आप मत बोला, आप नहीं बोलोगे तो मैं ही बोलूंगी, चलो राम को बुलाओ। और राम को जब बुलाया गया आए, देखिए दशरथ महाराज दशरथ का चेहरा देखकर बहुत दुखी हो रहा है, ऐसे क्यों, क्या ऐसा कौन सा संकट आ गया है, इतने दुखी क्यों हो आप। कैकेयी कहने लगी वो नहीं बता सकते, मैं बताऊंगी। बोले तुम्हारा राज्याभिषेक तो दूर की बात, तुम्हें वन में जाना पड़ेगा 14 साल के लिए, और भरत को एक क्षण के लिए भी उनके चेहरे में इतना भी परिवर्तन नहीं हुआ प्रभु रामचंद्र के। उन्होंने कहा और कुछ, इतना ही ना, इसके लिए क्यों इतना उदास है हमारे पिताजी, ठीक है बोलना था अभी निकल जाता हूं चलो, और कुछ, एक क्षण के लिए वैसा नहीं, मेरा राज्याभिषेक, अच्छा ठीक है आप कहते हो तो ठीक है चलो रिजाइन कर दूंगा। नहीं, एक क्षण के लिए ऐसा नहीं कि सोचे, ठीक है क्यों, क्योंकि उनकी भावना थी कि मैं महाराज दशरथ का सेवक हूं और उनको प्रसन्न करना मेरा कर्तव्य है, वो प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न, मैं सेवक हूं। अगर मेरा सेवा कहते कि तुम्हारा सेवा है कि पूरे राज्य का साम्राज्य चलाओ, आप अगर इसे प्रसन्न है तो मैं करने के लिए तैयार, सब छोड़ के जंगल में जाओ, मैं आपका सेवक हूं, अगर वही चाहते हो तो मैं करने के लिए, आप प्रसन्न हो ऐसे प्रसाद और भगवत प्रसाद ऐसे अप्रसाद आना, आपको प्रसन्न करना है प्रभु। तो ये भावना जिसके अंदर होगी केवल वही ऐसी परिस्थिति में भी बिना कोई हिचकिचाहट के भगवान की कृपा के रूप में देखेगा। कुछ हद तक अगर भोगने की इच्छा है या आसक्ति है, उस हद तक सोचना पड़ेगा। तो जीव का इस भौतिक संसार में दो चीजों का रिश्ता है, एक भगवान के साथ हमारा रिश्ता और दूसरा शरीर से संबंधित जितने सारे रिश्ते नाते। एक संबंध शाश्वत नित्य सत्य है और दूसरा अशाश्वत क्षणिक और माइक है, माया की है। एक शुद्ध भक्त अपने जो भगवान के साथ जो नित्य संबंध है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उस सनातन संबंध जो भगवान के साथ है, उस दो प्रकार के पात्र, एक हमारा पात्र है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, और दूसरा पात्र है कि भगवान ने अभी हमको एक शरीर दिया है, उस शरीर से संबंधित चीजें इत्यादि रिश्ते नाते हैं। तो दोनों को बड़े जिम्मेदारी पूर्वक निभाता है, जिस प्रकार एक उदाहरण देखिए तब आप समझ में आ जाएंगे। एक ड्रामा का डायरेक्टर है, ड्रामा का डायरेक्टर क्या करता है, एक व्यक्ति को लेता है, चल तू राजा बन जा और तू मंत्री और तू रानी, तू सेनापति, तू सेवक, ठीक है चलो तुम लोगों का ये पात्र है। और पहले तो रोल देता है वो, मतलब पात्र में क्या क्या डायलॉग है, ये तुम्हारा डायलॉग, और फिर ये तुम्हारा पोशाक, ये राजा का पोशाक है मुकुट पहनने का, और तू तू सेवक है तू ये पहनना धोती कुर्ता बस साधारण बंडी पगड़ी जो भी। तो हर एक व्यक्ति को डायरेक्टर एक पोशाक देता है और एक पात्र देता है, और कहता है कि अभी स्टेज में जाने का इस समय में एंट्री लेना और इतना डायलॉग बोलना और उसके बाद मैं ऐसा इशारा करूंगा तो बाहर निकल के आ जाना। ठीक है, जाता है सेवक और समझ लीजिए सेवक को एक लॉटरी लग गया नाटक में, लॉटरी लग गया, 2 लाख रुपया हाथ में लिया, बहुत खुश है 2 लाख रुपया क्योंकि लॉटरी लग गया उसको, और जा रहा है तो पीछे से एक गुंडा आता है और उसे चाकू मार देता है, वो भी नाटक का एक सीन है। गिर गया, कर्टन बंद, कर्टन बंद होते साथ उठता है, चाकू निकाल के उसके ओनर को दे देता है और पैसा जिसने दिया था उसको दे देता है, हाथ साफ करके डायरेक्टर से मिलने जाता है, कैसा रहा प्रभु जी? ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा, खुश कि मेरे को जो पात्र दिया गया मैंने पूरा बड़े गंभीरता से, जब पैसा मिला तो बहुत खुश हुआ, ऐसा नहीं कि मेरा तो है ही नहीं वैसे भी क्यों करना इतना एक्टिंग, नहीं ऐसा एक्टिंग किया मानो वाह खुश है, और जब चाकू मारा गया तो बोला कुछ नहीं लगा अंदर, नहीं बोला सचमुच में। तो नाटक बहुत ही रियलिस्टिक, पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि डायरेक्टर का कहना है कि एक बड़ा मैसेज देना चाहिए, अच्छे तरह से नाटक करना। पर कर्टन बंद होने के बाद अगर वो पैसा बोला अभी मेरे को मिला हुआ कोई मांगना मत, और तूने चाकू क्यों मारा रे, अभी तेरे को मैं मारता हूं, अगर गुस्से में आ गया इसका मतलब वो ड्रामा से थोड़ा ज्यादा ही एक्सटेंड कर रहा है, वो अपनी दुनिया में घुस गया है वो। इस तरीके से दो हमारे पात्र हैं, एक तो परम डायरेक्टर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जिनतिष्ठति भ्रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, परम डायरेक्टर ईश्वर परम कृष्ण वो डायरेक्ट मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में सब प्रकृति चल रही है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, सबको मैंने अपना अपना रोल दे दिया है, पात्रता दिया हुआ है, तू ये है, तू एक पुरुष है, स्त्री है, ये है, वो है, वो है, सब कुछ है, तो अपना अपना कार्य करो, पर भूलना मत हरेक को मैंने रोल दे के रखा है, सबका रोल इसके अंदर लिख के रखा है, कौन कौन कैसा एक्टिंग करना चाहिए, ब्राह्मण कैसा एक्टिंग करना चाहिए, क्षत्रिय कैसा करना चाहिए, शूद्र वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कैसा कैसा एक्टिंग, सबका रोल इसके अंदर है, ये ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा दे के भेजा हुआ है और हमें करना चाहिए परफेक्टली, बहुत अच्छी, जितने अच्छे तरह से हो सके उतना अच्छा से करना चाहिए, पर अगर डायरेक्टर ने सिग्नल दे दिया बोला बस हो गया तेरा नाटक अभी वापस आ जा, अगर ऐसे तू आएगा तो उसका मैसेज बहुत अच्छा पड़ेगा पब्लिक पर, बोला नहीं 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 नहीं, नहीं ये रोल मेरे को अच्छा लग रहा है और थोड़ा करूंगा नाटक, बोला नहीं तेरा डायलॉग हो गया अभी निकल, नहीं 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 और थोड़ा करूंगा मेरे को अच्छा लग रहा है, ये कर्मी व्यक्ति है, ये शरीर हमको जो मिला है आत्मा को ये हमारा कॉस्ट्यूम, नाटक में सब लोग अपना अपना एक पोशाक पहनते हैं, तो ये कॉस्ट्यूम है, किसी को स्त्री का पोशाक मिला है, किसी को पुरुष का मिला है, किसी को कुत्ते का मिला है, किसी को बिल्ली का मिला है, अलग अलग पोशाक मिला है, और अलग अलग पोशाक में हमारा अपना अपना पात्र है, जाति धर्म गुण धर्म स्त्री धर्म देश धर्म बहुत सारे धर्म है, ये सब हमारा पात्र है, तो निभाना है जैसा बोला गया वैसा निभाना है, पर अगर डायरेक्टर बोले नहीं कट ठीक है निकल जाऊंगा मैं, पर जब डायरेक्टर बंद करने बोल रहा है फिर नहीं 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 मत बंद करो मेरे को अच्छा लग रहा है और थोड़ा राजा बनाऊं मैं थोड़ा और नाटक करूंगा, इसका मतलब वो कर्मी हो गया। कर्मी मतलब कौन? जिसको लगने लगता है कि मैं एक्चुअली ड्रामा बना रहा हूं, मैं इतना महत्व, मेरा पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मैं यहां मर जाऊंगा अभी तो मजा चला जाएगा पूरा ड्रामा में, मैं और रहना चाहता हूं और यहां कंटिन्यू करना चाहता हूं, वो एक कर्मी है। और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी बोल मेरे को अच्छा नहीं लगता ये नाटक, उसको राजा क्यों बनाया, मेरे को राजा बनाओ, मैं सेवक नहीं बनूंगा मैं मंत्री बनूंगा, नहीं तुम नहीं बन सकते, मैं ड्रामा नहीं करूंगा, चलो मैं नहीं करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, बस मुक्ति चाहिए मेरे को, तंग आ गया मैं, ये रोल वो रोल, कोई रोल नहीं करूंगा मैं, मुक्ति। स्पॉइल्ड स्पोर्ट, इच्छा नहीं उसको ड्रामा करने की। भगवान बोल रहे हैं ड्रामा नहीं करूंगा ना मैं, डायरेक्टर बोल रहा है पर नहीं करूंगा मैं। एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ड्रामा करना चाहता है और दूसरा बोलता है मेरे को ड्रामा करना ही नहीं। और भक्त कौन है? एक सेवक है। डायरेक्टर को बहुत शरणागत, प्रभु अब क्यों बोलो, कैसे बोलो, क्या बोलो, अभी करना है, ठीक है हो गया, बोलू क्या, ये डायलॉग ठीक है, कर्टन बंद, हरि बोल। तो जब तक ये भावना नहीं होती कि वेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, वो प्रभु हैं, हम उनके नित्य दास हैं और उनको प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, ये भावना आ जाए तो वो भक्ति है, वो भक्त है एक्चुअली। चाहे वो विश्व के सम्राट का पात्र क्यों ना हो, या एक, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा। मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं। नहीं हूं का मतलब क्या, जब वो सन्यासी थे तो सन्यासी का धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाए, जब वो गृहस्थ थे तो गृहस्थ का धर्म परफेक्टली निभाए, परफेक्ट सारा पात्र परफेक्टली निभाए। पर कहते हैं क्या है कि मैं ये सब नहीं हूं, ये मेरा पोशाक है, ये मेरा पात्र टेम्पररी जो डायरेक्टर ने मुझे दिया है मैं कर रहा हूं बस, और क्योंकि उन्होंने मुझे दिया है उसको परफेक्टली मैं करूंगा। पर जब एक सूचना मिल जाए नहीं हो गया ड्रामा। अभी गोपी भर्त किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताभ्यर गोपी भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदास। ये एक्चुअली ये भावना होनी चाहिए, और जिसके अंदर ये भावना है चाहे वो हमारे छोटे मोटे संसार के राजा क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति में क्यों ना हो, उसको हम सही भावना से स्वीकार करेंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज इस कथा में हम सीख सकते हैं, किस प्रकार परीक्षित महाराज ने भगवान की जो इच्छा को स्वीकार किया, बिना दोष दिए, बिना घृणात्मक रूप से उनकी निंदा करते हुए क्यों ऐसा करते हैं, नहीं, ये भगवान की योजना है, मैं अपना पात्र पूरा निभाया, इसके बावजूद जो भी हो रहा है ये भगवान की योजना है, धन्यवाद प्रभु। तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाक हृद्वाग वपुर्भिर् विदधानमस्ति जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंप, सब कुछ भगवान के निर्देशन में हो रहा है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो भगवान के निर्देशन के बाहर कुछ हो रहा है। एक पत्ता उनके अनुमति के बिना, एक घास उनके अनुमति के बिना, एक अच्छा इच्छा, एक 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 विचार उनकी अनुमति के बिना नहीं आ सकता। जो भी है उनकी कृपा है। हर एक स्थिति में एक भक्त सिर्फ यही सोचता है, इस परिस्थिति में मैं कैसे किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाऊं जिससे भगवान प्रसन्न हो, भले दुनिया प्रसन्न हो मुझे परवाह नहीं है, भले मैं प्रसन्न हूं या नहीं मुझे परवाह नहीं है, भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान की योजना थी, भगवान चाहते थे कि परीक्षित महाराज तुरंत से तुरंत इस संसार को छोड़कर भगवत धाम मेरे धाम को आ जाए। क्यों? क्योंकि जब तक महाराज परीक्षित जैसे एक सम्राट हैं, कली का प्रवेश हो ही नहीं सकता। कली और एक अच्छा राजा वो हो ही नहीं सकता कि साथ साथ में हो, एक आदर्श राजा और कली साथ साथ में निवास करे सवाल ही नहीं उठता। जब तक महाराज परीक्षित हैं तब तक कली का प्रवेश नहीं है, और कलियुग का समय आ गया है, कलियुग को आना ही चाहिए, और महाराज परीक्षित के होते हुए कली घुस ही नहीं सकता था। महाराज परीक्षित ने चार स्थान दिया, पांचवा स्थान भी दिया, पर कोई स्थान ही नहीं था। अगर मैं कहूंगा, कोई आता है मंदिर में और कहता है कि भाई ऐसे जगह में रहो जहां मार्बल का फ्लोरिंग हो, तो मार्बल फ्लोरिंग है ही नहीं, मतलब तुमको जगह है ही नहीं, इधर रह सकते हो। इस मंदिर में कहां भी वहां भी रह सकते हो जहां का रूफ मार्बल का, और रूफ क्या होता है, पतरे का है, मतलब मैंने स्थान दिया पर वो स्थान है ही नहीं, मतलब धोखा दे दिया मैंने, मैंने उसको बुरा नहीं किया, उसको मतलब दुखाया नहीं, चलो तेरे स्थान मिल गया, पर एक्चुअली वो स्थान है ही नहीं यहां। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये यहां यहां ये चार चीज होता है, यहां पांचवा चीज है, वहां रह सकते हो, पर पूरे साम्राज्य में कोई स्थान ही नहीं था। तो महाराज परीक्षित के होते हुए कली का प्रवेश हो नहीं सकता था, कली का समय आ गया था, नंबर एक। और डायरेक्टर का दूसरा प्लान क्या था ड्रामा का, ये सब ड्रामा का, कि कलव दोष निधे लेने नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित, कृष्णे सुधामपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलव नष्ट दृशामेश पुराण, भागवत पुराण को प्रकट करना था, और परीक्षित महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत का अवतीर्ण होना जरूरी था। और जब तक उनको 7 दिन का नोटिस नहीं मिलेगा तब तक होगा नहीं है, और तब सुखदेव गोस्वामी आएंगे भगवान की इच्छा के अनुसार, जो हम देखेंगे इस अध्याय में। तो इस तरह से ये दो योजना था डायरेक्टर का, जो परम डायरेक्टर है कृष्ण, उनकी दो इच्छा थी। ये सारा ड्रामा का संदेश क्या है, परीक्षित महाराज कैसे भगवत धाम जाएंगे और श्रीमद् भागवतम का इस संसार में अवतरण होगा, ये दो क्रिया। परीक्षित महाराज इसीलिए समझ गए, संघर्ष नहीं किए, परीक्षित महाराज के अंदर वो शक्ति थी कि श्रृंगी को वापस श्राप दे सकते थे, या उसको उसकी जो अभिशाप शाप है उसको काउंट्रैक्ट कर सकते थे, मतलब उसका कुछ सब ये निकाल सकते थे, कैसे उसे बचा जाए, बचने का उपाय निकाल सकते थे, बच भी सकते थे, पर उन्होंने भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया। इस तरह से हमारे जीवन में कुछ घटनाएं जैसे जब होती है जो भगवान की इच्छा के अनुसार होती है, हमारे हमने प्रयास किया, जो कुछ किया, इसके बावजूद भी जो हुआ, जैसे भक्ति तीर्थ महाराज के जीवन में हम देखते हैं, उन्होंने प्रयास किया, उनके शिष्य की इच्छा थी कि नहीं 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 आप और हमारे साथ रहना चाहिए, ठीक है मैंने प्रयास किया, मैं उधर गया उस डॉक्टर के पास गया, इस डॉक्टर के पास गए, सब कुछ गया, इसके बावजूद भी भगवान की कुछ और इच्छा थी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कोशिश पूरा किया, इसके बावजूद भी अगर ऐसा है, ठीक है भगवान की इच्छा है, स्वीकार करो। और कैसे पता किया जाए कि भगवान की इच्छा थी, सुखदेव गोस्वामी का आना वहां, सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति का आना अपने जीवन में, आप समझ जाना चाहिए कि भगवान गुरु कृष्ण प्रसादे पाए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे एक शुद्ध भक्त की कृपा हमारे जीवन में आई, इसका मतलब आप समझ लेना कि भगवान ने कृपा की है, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, ऐसे महान व्यक्ति के अपने जीवन में प्रवेश हुआ तो समझ लीजिए भगवान ने कृपा दृष्टि हम पर डाली है, उसके उनके बिना डाले ऐसे व्यक्ति जिनको पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड में देखने के लिए नहीं मिलता, विरला कोई ऐसा व्यक्ति है, एक शुद्ध भक्त इस संसार में चलता फिरता आदमी नहीं है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुत ही मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन नहीं हो पाता, दर्शन छोड़ो उससे भी ज्यादा सौभाग्य है उस व्यक्ति का सुनना, सुखदेव गोस्वामी ऐसे विरक्त व्यक्ति थे कि किसी गृहस्थ घर में दूध दोहने में जितना 5-10 मिनट लगता था वहां खड़े होते थे, सौभाग्यशाली गृहस्थ के जीवन में आते थे और दूध स्वीकार किया और जैसे दूध पीकर निकल गए, बस एक कुछ बोला नहीं कुछ नहीं, बस कृपा देने हेतु। परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप जैसे महान व्यक्ति जिनका दर्शन बहुत मुश्किल है, सुनना तो दूर की बात, आप 7 दिन और 7 रात लगातार मुझे भागवत कथा सुनाने आए हैं, इससे मैं समझ सकता हूं कि भगवान की अहैतु की कृपा मेरे ऊपर है। उनकी इच्छा के बिना आप जैसे व्यक्ति मेरे जीवन में आ ही नहीं सकते, इससे मैं समझ सकता हूं कि यह इच्छा भगवान की ही इच्छा है, यह एक्चुअली भगवान की ही इच्छा है। तो इस तरह से जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने इसे भगवान के योजना जानकर समझकर बड़े प्रेम पूर्वक इसको अपने जीवन में स्वागत किया, इसी तरह से भगवान की इच्छा को जानकर अपने जीवन में अगर हम उसको स्वागत करते हैं, अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां घटनाएं आएंगी हर एक के जीवन में। भगवान व्यक्ति जिस हद तक हम भगवान की शरण जाते हैं उस हद तक डायरेक्टली भगवान हमारे जीवन को चलाएंगे, और जिस तरह से भी वो, जिस प्रकार से वो भेजे उसको अगर हम स्वीकार करें, इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से परीक्षित ने स्वीकार किया, तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या? यस। एक्चुअली परीक्षित महाराज ने भी कली को आश्रय क्यों दिया उसको बताया गया है। परीक्षित महाराज सारग्राही व्यक्ति थे और वो देख रहे थे कि स्वाभाविक है, कली मतलब कलह, झगड़ा, दाम्भिकता, स्वभाव है कली का। तो कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। कली के सारे जो बुरे लक्षण है उसको अगर एक पलड़े पे डालो, अस्ति ही एको महान गुण, और उसका एक महान गुण जो है कली में, कलियुग का, उसको अगर एक तराजू के एक पलड़े में डालो तो यह पलड़ा जो है नीचे आ जाएगा। इसीलिए देवतागण भी कलयुग में आना चाहते हैं इस पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि यहां श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, मतलब 1000 युग सत्रेता द्वापर कली उसके 28वें मनवंतर के 28वें युग के द्वापर में ही आते हैं, वो कली में ही आते हैं इस तरह से। और कलयुग में ही खासियत यह है कि कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त हर नाम एव केवलम कलौ नास्ति भगवत्। जो भगवत धाम जाने का मार्ग है, जब परीक्षित महाराज जाने के लिए तैयारी हुए पूरे ब्रह्मांड के, विश्व के नहीं ब्रह्मांड के देवर्षि राजर्षिगण और ब्रह्मर्षि, दूसरे ग्रहों से भी परीक्षित महाराज का दर्शन करने आए। किस लिए? क्योंकि उनको मालूम था कि यह व्यक्ति डायरेक्ट भगवत धाम जा रहा है और भागवत सुनने मिलेगा सुखदेव गोस्वामी के मुंह से। यही दो हेतु आए। बोले ऐसे व्यक्ति का फिर से दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसे महान भक्त जो भगवत धाम जा रहा है उसका दर्शन करने आए थे। तो इतना दुर्लभ है, पर ब्रह्मांड के देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षिगण वो लोग आते हैं दर्शन के लिए। और ऐसा कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु मुफ्त में सबको बांट रहे। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वलसाम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पित चरिम चिरात, चिरात मतलब दीर्घ काल से न दिया हुआ ऐसा सौभाग्य। सो परीक्षित महाराज ने देखा कि कली का एक अच्छा गुण है और इसमें बहुत सारे दोष निधे, दोषों का सागर है, पर इसमें एक अच्छा गुण है और वो एक अच्छा गुण के तुलना में ये सारे दुर्गुण चलेगा। इट इज वर्थ ऑल द मिजरीज। आयु कम है, हमेशा व्यक्ति चिंतित है, कुछ भी हो, पर सिर्फ हरिनाम लेने से, कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग, भौतिक संसार के संग से मुक्त होकर परम ब्रजित। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो जानते थे भगवान की इच्छा भी है, कलियुग का खासियत भी है, ये सब जानते हुए कली को परीक्षित महाराज ने स्थान दिया। और दूसरा चीज है, एक शुद्ध भक्त होने के कारण परीक्षित महाराज को कंफर्मेशन भी मिल गया। जब इतने सारे महात्मा लोग आए और सुखदेव गोस्वामी जब आए, दिस वॉज लाइक द सील ऑन द कंफर्मेशन कि दिस इज कृष्णस प्लान। क्योंकि सबसे पूछ रहे थे, मैंने ऐसा निर्णय लिया है कि मैं उपवास करूंगा गंगा के तट पर बैठ के, 7 दिन 7 रात कुछ खाऊंगा नहीं। ही वॉन्टेड टू कंफर्म एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ वैष्णवस, इवन दो ही हैड डिसाइडेड। उन्होंने निर्णय ले लिया, पर जब सारे साधु लोग आए उनके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। रूपा जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, एक महान व्यक्ति का लक्षण यह है कि भले उसको मालूम है ये निर्णय ले रहा है, बट ही कंफर्म्स इट विद ग्रेट सोल्स। उन्होंने कहा, साधु साधु योर डिसीजन इज परफेक्ट। तब समझ गए कि भगवान की इच्छा है। एक तो उनके हृदय से अंदर से वो कन्विक्शन हुआ, उन्होंने कंफर्म भी किया, और फिर सुखदेव गोस्वामी का आना। सो इस तरह से कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये भगवान की योजना है। और भगवान की योजना कैसे हमको पता लगे? क्योंकि उनकी एक योजना है कि 4 युग तो आना ही है, पर हर एक युग के लिए ही गिव्स द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन ऑल्सो। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम ये तो मई द्वापर परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। चित्र महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम नाम और भागवत, तो परीक्षित महाराज के द्वारा ही वॉन्टेड टू गिव द होल वर्ल्ड श्रीमद् भागवतम। श्रवणम का एक आदर्श उदाहरण दिलाना चाहते थे, तो ये कारण था। परीक्षित महाराज जाने कि भगवान की इच्छा है, भगवान ने ही मुझे बचाया था, मेरा बचने का कोई चांस सवाल ही नहीं था, मां के गर्भ में जल के राख हो गया था ब्रह्मास्त्र से, उन्होंने बचाया। और अभी वो चाहते हैं कि, क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि नहीं ये 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 पात्र का एंट्री लेना होना बहुत जरूरी है, उन्होंने बचाया मुझे, और अब वो चाहते हैं कि मैं एग्जिट ले लूं। ठीक है, इज दैट द क्वेश्चन दैट यू आस्क, वॉज इट योर क्वेश्चन? परीक्षित महाराज रहते तो भी कितने साल, पूरे कलयुग में तो नहीं रहने वाले हो। तो परीक्षित के द्वारा कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को, भागवत के रूप में भगवान अवतरण लिए, नाम के रूप में अवतरित हुए। तो दो स्वरूप है, एक भागवत के रूप में, भागवत में और कृष्ण में अंतर नहीं, कलौ नष्ट दृशामेश, ऐसा ही ये है सूर्य जो सही चीजों को सही तरह से दिखाता है, और नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ताकि कितना भी बद्ध जीव हो बड़े आसानी से वो उनको एक मार्ग मिल जाए। हरेक योनि में, हरेक युगों में भगवत प्राप्ति का मार्ग उस युग के लिए जो अनुकूल है वो बना के देते हैं भगवान। कलयुग में दूसरा तुम न तपस्या कर सकते हो, न यज्ञ कर सकते हो, न दान दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, चुप हरे कृष्ण जपो बस, वो भी नहीं करने वाले। तो सरल तो बना के दिया है, पर एक्चुअली सतयुग में जप करना या ध्यान करना जितना मुश्किल था, त्रेता युग में यज्ञ करना जितना कठिन था, द्वापर युग में एलैबरेट टेंपल वर्शिप जितना ही मुश्किल था, वो उतना ही कलयुग में हरिनाम लेना भी मुश्किल हमारे लिए। 16 माला हर रोज कौन सा बड़ा काम है, क्या मिल रहा है उसके बदले में, वो भी हमारे लिए समस्या। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब रूप से दुर्भाग्यशाली है कलयुग का जीव जो है, बहुत दुर्दयनीय स्थिति है उसकी। एक्चुअली सतयुग में, दूसरे युगों में लोगों के शक्ति, आयु क्या थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या था, भोग कैसा था, भगवान भी आते थे यज्ञ किया तो, और देवतागण तो रेगुलरली आते जाते थे, यज्ञ किया तो आना ही है उनको, लेके अपना अपना जाना बस, भगवान भी आते थे, विष्णु साक्षात आते थे द्वापर के अंत में। पर कली में वो यज्ञ किया तो एक ब्राह्मण भी ठीक में मिलता नहीं, दूसरा तो दूर की बात, घी शुद्ध नहीं, मंत्र उपचार ठीक नहीं, मंत्र उच्चारण ठीक नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए बोले तू लोग छोड़े ये सब, जब हरे कृष्ण जपो बस, और वो हरे कृष्ण भी हालेगा, वो चाइनीज हो और हले हले कृष्ण बोला तू भी चलेगा, हृदय से बस भगवान को संबोधित करते हुए ये जपो ना। हाउ मच मर्सीफुल एंड महाप्रभु दर्शो ही नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायित, समझ लीजिए। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज एक बार बता रहे थे, बोले वो राजा दान दे रहा है, अमृत बांट रहा है, चलो अमृत ले लो, अमृत ले लो, अमृत ले लो, सब अपना लाओ, बर्तन लाओ, ये लो ले जाओ, फ्री में बांट रहा अमृत। एक भिखारी आके बोलता है बर्तन भी धोना मेरे को, एक तो अमृत दे रहा है पर बर्तन धोना मेरे को, बर्तन भी नहीं मेरे पास, एक तो यार मैं अमृत बांट रहा हूं फ्री में, मेरे से बर्तन भी मांगता है तू। बोले चल ये ले बर्तन, ले सोने का बर्तन, ये चैतन्य महाप्रभु। पात्र अपात्र देखे ना देखे, स्थान स्थान, एक तो दे रहे हरिनाम लो, वो लेके पकड़ने के हमारे पास ये भी नहीं है, क्या बोलते हैं पात्रता भी नहीं है, वो पात्रता भी हमको दे रहे, चलो जगाई माताई जैसे भी हो तू ही चलेगा, सिर्फ मुझे स्वीकार करो, एक बार देख ले चखे जल, एक बार देख ले चखे जल, गौर बोले निताय देन सकल समा, एक बार अगर देखते हैं कि इसके अंदर इच्छा है हरिनाम लेने की, अंदर से पात्रता तैयार हो जाता है, चलो ठीक है हरिनाम को पकड़ने के लिए मैं था, वो पात्रता भी मैं दे देता हूं, इच्छा करो बस। हु कैन बी मोर मो महावदान्य, हु कैन बी मोर मर्सीफुल, कृष्ण प्रेम। अरे मुक्तात्माओं को भी, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण प्राण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशपि महामुनि, मुक्तात्माओं को भी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति, और भी ज्यादा पहुंच गए तो फिर वैकुंठ में प्रवेश। पर गोलोक, कृष्ण माधुर्य लीला, ऐश्वर्य भाव से पूजा करके भगवत धाम जाते थे कितने लोग, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कली में, सत्रेता द्वापर में, ब्रह्मा जी के हर जिसमें कोई गोलोक का नाम भी नहीं सुना। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के बाहर आप सुनो, कितने लोगों को गोलोक नाम का चीज भी हो तो मालूम है, उनको यह भी नहीं मालूम कि कृष्ण जो है वो विष्णु से भी श्रेष्ठ है। दे डोंट एक्सेप्ट, दे कांट इवन अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली व्हाट व्यासदेव हैज गिवन। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, दैट इज द एक्चुअली एसेंस ऑफ द होल श्लोका, पिवट ऑन विच द होल भागवतम इज बिल्ट। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अंशकला के बारे में जानते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षा, क्षीरोदक्षा, विष्णु, ये विष्णु, बहुत सारे अवतार, नरसिंह, वामन, वराह इत्यादि, बट नो, रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मुखर कृष्ण स्वयं संभवत्। दिस इज वेरी रेयर। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, ना उनके नाम रूप गुण लीला उनसे अभिन्न है। रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अवलम प्रेमा पुमार्थो महा। ये पांच चीज जो चैतन्य महाप्रभु का देन है, ओनली दोज हु हैव टेकन शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु कैन अंडरस्टैंड, हैव एंट्री इनटू दिस। वो लोग भी भागवतम पढ़ते हैं पर कृष्ण भगवान नहीं समझ पाते। नारायण भागवतम को मानते हैं वो लोग दूसरे संप्रदाय में, बट विष्णु वर्शिप, क्या बोलते हैं, माधुर्य नहीं, औदा, ये क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य भाव है। उन्नत उज्ज्वल साम सुभक्ति श्रियम, दैट्स वेरी रेयर। सो नोइंग दैट इट्स वर्थ, कलयुग तो वैसे भी आने वाला, हर चार युग के बाद आने ही वाला है, आप चाहो, क्योंकि उनका ही योजना है, एवरीथिंग डिग्रेड्स, तो आने वाला है, भगवान की योजना है वो, पर उसके लिए तैयारी भी की है, पूरा तैयारी करके दिए हैं, इस युग में भी परम धाम को कैसे प्राप्त हो। Does that satisfy you? To some extent. श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।